अध्याय 17 पदावली की भाषा। विद्यापति का जन्म ऐसे समय हुआ जिसे हम नव्य भारतीय आर्य भाषा का आरंभिक संक्रमण काल कह सकते हैं। उस समय मध्यकालीन आर्य भाषा को अंतिम कड़ी अभ्रंश भाषा की जनभाषा के स्थान से हट चुकी थी। मुसलमानी आक्रमण के कारण यद्यपि नव्य भारतीय भाषाओं के विकास में त्वरा आ गई, फिर भी 14वीं शताब्दी तक वे इस योग्य नहीं हो पाई थी कि उनमें उच्च कोटि की काव्य अनुभूतियाँ व्यक्त की जा सकें। यह सही है कि बहुत से कवि उस समय भी अभ्रंश भाषा में काव्य लिखते थे, किंतु जन संपर्क से वंचित हो जाने के कारण इस भाषा में लिखे काव्य लोकप्रिय नहीं हो सके थे। विद्यापति ने इस स्थिति को भली भांति समझा था और उन्होंने अपनी कीर्तिलता में बड़े साफ ढंग से इसका विश्लेषण भी किया। उन्होंने लिखा है, सक्कय वाणी बहुजन भावई, पाव रस को मम मन पावई, देशिल बाना सब जन मीठा, तन तैसन जम्पम अवहट्टा। कीर्तिलता। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्यापति की दृष्टि से संस्कृत केवल विद्वानों की भाषा बनकर रह गई थी। प्राकृत काव्य नीरस लगता था, अभ्रंश प्रचलित अवश्य थी किंतु देशी भाषा की तुलना में मीठी नहीं लगती थी। इसीलिए विद्यापति ने कीर्तिलता में अभ्रंश को देशी भाषा के समन्वय से मधुर बनाकर अपने काव्य का माध्यम बनाया। इसे उन्होंने अवहट्ट नाम दिया। अवहट्ट वस्तुतः सर्वश्रेणी अभ्रंश और ब्रज भाषा के बीच की कड़ी थी। यह अवहट्ट भाषा संपूर्ण उत्तर भारत की कृत्रिम साहित्यिक भाषा थी। इसका प्रयोग दरबारी चारण पूर्व से पश्चिम तक सर्वत्र समान रूप से करते थे। इसी का परवर्ती रूप पूर्वी क्षेत्र में स्थानीय बोलियों के सम्मिश्रण में एक व्यापक सरल भाषा के रूप में उदित हुआ, जिसमें निश्चय ही प्राचीन मैथिली और ब्रज भाषा के तत्व प्रचुर मात्रा में मिश्रित थे। यही भाषा बाद में पूर्वीय क्षेत्र के कृष्ण भक्त कवियों की मुख्य सांस्कृतिक भाषा बन गई और इसे हिंदी कृष्ण काव्य की एकमात्र माध्यम भाषा ब्रज के साथ संबंधित करके ब्रजबुली नाम दिया गया। इस तथ्य को ठीक से न समझ सकने के कारण ही विद्यापति की पदावली को हिंदी, मैथिली या बंगला में लिखे जाने का व्यर्थ विवाद खड़ा हुआ। आरंभ में बंगीय विद्वानों ने पदावली की भाषा को बंगला सिद्ध करने का घोर प्रयत्न किया। हिंदी के विद्वान भी कम दुराग्रही नहीं रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पदावली की भाषा पर विचार करते हुए लिखा, नोटेड कामा, विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितने दूर तक समझी जाती है इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, वैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का परस्पर इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरख, बलिया आदि जिलों में आयल आयल, गयल गयल, हमरा त्योहार आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देव रासो पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। शुक्ल जी का उपयुक्त मत स्पष्ट हो भाषा शास्त्री लगता है। केवल शब्दावली की समता को ही भाषाओं की एकता का आधार माना जाए तब तो भारत में जहाँ प्रायः तमिल को छोड़कर अधिकांश नव्य आर्य भाषाओं की शब्दावली संस्कृत से ली जाने के कारण समान है। सिर्फ एक भाषा ही प्रचलित है ऐसा मानना अनिवार्य हो जाएगा। उर्दू हिंदी के बहुत नज़दीक है बावजूद शब्दावली के अंतर के, क्योंकि भाषा की निकटता उनके व्याकरणिक ढांचे की निकटता पर अवलंबित होती है, मात्र शब्दावली की एक रूपता पर नहीं। इन दोनों ही अतिवादी छोरों के आग्रह के कारण जो मैथिली का पृथक अस्तित्व अस्वीकार करना चाहते हैं, मिथिला के अनेक विद्वानों ने पदावली और कीर्तिलता की भाषा के विषय में यदि प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाया तो इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर उमेश मिश्र, डॉक्टर जयकांत मिश्र, पंडित शिवनंदन ठाकुर आदि ने कीर्तिलता की भाषा को मिथिला प्रसंग और पदावली की भाषा को शुद्ध मैथिली सिद्ध करने का प्रयास किया, किंतु इतना स्वीकार करते हुए भी विद्यापति मैथिली के गौरवास्पद कवि हैं, यह कहना भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित नहीं होगा कि पदावली की भाषा मैथिली भाषा में सौर श्रेणी और ब्रंश विकसित तत्व और पुरानी ब्रज भाषा के अनेक तत्व घुल मिल गए हैं। इस दृष्टि से डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी का कथन सत्य प्रतीत होता है कि ब्रज बोली इस बात का द्योतक है कि एक बनावटी भाषा भी दूसरे प्रांत में काव्य भाषा के रूप में किस प्रकार ग्रहण की जा सकती है, और इसी से इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि किस प्रकार सौर श्रेणी या ब्रंश या अवहट मध्य देश के अलावा बंगाल आदि तक में छाया हुआ था। अब तो डॉक्टर सुकुमार सेन भी अपने पूर्व मत को बदलने के लिए तैयार हो गए हैं। वे ब्रज बोली को अब पूर्वीय भाषा मात्र ही नहीं मानते, अब वे पूर्वी नव्य भारतीय आर्य भाषा के पुराने रूप में ब्रज तत्वों के सम्मिश्रण से ब्रज बोली के निर्माण की बात करने लगे हैं। दूसरी ओर डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जैसे हस्तलेखों के अनुसंधायक और पुराने सर्वेक्षणों के शोधक ब्रज बोली का ब्रज भाषा से कोई संबंध ही नहीं मानते। उन्होंने उपलब्धि में प्रकाशित एक लेख में ब्रज बोली को मैथिली प्रकारांतर से विद्यापति के गीतों की भाषा कहा है। अच्छा ही डॉक्टर गुप्त जैसे लोग भाषा के क्षेत्र में इस तरह की निराधार बातें करने से विरत रहे। ब्रज बोली को अधिक से अधिक ब्रज मिश्रित मैथिली कहा जा सकता है। मैं अपनी पुस्तक सूरपुरु ब्रज भाषा में इस विषय पर बहुत विस्तार से लिख चुका हूँ। एक और डॉक्टर चटर्जी, डॉक्टर सेन, डॉक्टर बरुआ जैसे लोग ब्रज का प्रभाव स्वीकार करने में हिचकते नहीं, वहीं डॉक्टर गुप्त जैसे भाषा शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति ब्रज बोली में सर्वत्र ल विभक्ति देखकर अयली गैली का उल्लेख करते हैं। पदावली की भाषा पर ब्रज का कितना प्रभाव है इसे हम लोग आगे चलकर देखेंगे। पदावली की भाषा के अध्ययन में सबसे बड़ी कठिनाई किसी प्रमाणिक संशोधित संस्करण के अभाव की है। पदावली के अधिकांश संस्करण लिपिकारों की लेखन विधि के कारण भ्रष्ट हो चुके हैं। अधिकांश पांडुलिपियाँ चूंकि नेपाल में मिलती हैं, इस कारण नेवारी लिपि का अनिवार्य प्रभाव दिखाई पड़ता है। बंगाक्षरों में लिखी हुई पांडुलिपियाँ न केवल शब्दों का गलत उच्चारण उपस्थित करती हैं, बल्कि अनेक स्थलों पर ढांचे में बंगी प्रभाव भी ले लेती हैं। शून्य के स्थान पर शून्य का प्रयोग तो सामान्य बंगी प्रभाव कहा जाएगा। शुनल, शास, शुन, शुन, शुन जैसे प्रयोग इसी बात के सूचक हैं। बहुत से पदों में काव्य विन्यास, क्रियापद तथा सर्वनामों में भी बंगीय प्रभाव लाने की कोशिश की गई है। संबंध की बंगला विभक्ति एर या एरी का कई जगह प्रयोग मिलता है, जैसे परेरी, पर की, नांदेरी, नंदन, मित्र और मजूदार के संस्करण में भी एकाद प्रयोग मिलते हैं। सवारे, कदम्बरी, तरुतरे, इन थोड़े से अपवादिक प्रयोगों के आधार पर यह कहना कि विद्यापति ने संबंध कारक में एर विभक्ति का प्रयोग किया है उचित नहीं लगता। यह सही है कि अभ्रंश केरओ कई रूपों में विकसित हुआ, केरी, कर, क, एरी, रा, री आदि, किंतु पदावली में एरी या राजस्थानी के रा ली वाले प्रयोगों को ढूंढना ही अवैज्ञानिक कहा जाएगा। पदावली की मूल प्रवृत्ति क की है। ब्रज अवधि में प्रचलित केरी या कर का प्रभाव भी देखा जा सकता है, क्योंकि केरी कर वाले प्रयोग प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।